जाकर देख मेरी स्मृति और मेरी दुष्चर्य तब कथा था। प्रेम में जब भगवान की चर्चा हमारा सास पादम गुरु वंदनाएं करती है, वो वंदनाएं खूब विरहा से विफल है। निश्चित बरस नयन हमारे भगवान के लिए प्रतिफल वंदनाओं का विरह है, अपूर्वतम अन्यतम विरह है, लेकिन भगवान फिर भी वृंदावन चलकर नहीं आए हैं, क्योंकि परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं उनकी याचना में, उनके विरह में, उनकी पीड़ा में नीचे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि हे प्रभु हम तड़प तो रहे हैं लेकिन हे दया मैं कहीं हमारी उस पीड़ा को सुनकर चले मत। अजात पक्षाय मातरम खगाः स्तन्यं यथा वस्त्रतरं शुभारता प्रियं प्रिये वदिषितं विषन्ना मनोरविन्दात् शरीरिक्षते त्वाम्। ऐसा जो प्रेम है यही भागवत जी का एक परम प्रसाद है, जिसको श्रीमन महाप्रभु चरण कहा कि प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन मन साधन भी करे लेकिन श्रवणम कीर्तनम इष्टो भगवान की प्रीति आत। श्रीमन महाप्रभु जी श्री चैतन्य चटामंडी में कहा कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना, अगर किसी भी हमारी चेष्टा में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की प्रीति नहीं है, श्रद्धा सत्य विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कृष्ण श्रद्धा सत्य विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहिए सर्व कर्म कृत्य हो। और वो कैतव ही कैतव कहिए आत्मवंचना कृष्ण कृष्ण भक्ति बिन मन ने कहा। विष्णु भगवान की प्रीति के लिए जब कोई भी हम साधन श्रवण कीर्तन करेंगे तो निश्चित ही गुरुजनों की अनुमति में जैसे महाराज श्री दो दिन हमको बड़े विशिष्ट बड़े बड़े एक गौर देने के लिए गौर करवाते हुए कहा कि महात्मा गुरुजनों की अनुमति महत बिना कर्म करने भक्ति न रहे भक्ति दूर रहे संसार ना कुछ और। गुरुजनों की अनुमति में वैष्णवों की संगति में जब भजन हुआ तब हम जानेंगे कि भजन का भगवान की स्मृति का फल कोई शुद्र पदार्थ नहीं है, भगवान की स्मृति का फल तो वो भगवान की प्रेम की वो चिंतामणि। वो चिंतामणि जब प्राप्त होती है श्री बेलमंगल श्री कृष्ण कर्णामृत में भगवान से निवेदन याचना करते हैं भक्ति स्थिर करा भगवान यदि दैवे ना फलती विप्र किशोर मुक्ति मुक्ति ही स्वयं मुक्ति तांचलि सेवते अस्मान धर्मार्थ कामगतया समय प्रतीक्षा। यही चीज अपने चट्टान जी का प्रसाद, हम कुछ ना चाहे ना ही भगवान की प्रेम की ओर चलेंगे। आज जिन देवियों की देवताओं की अन्यत्र हम याचना करते हैं अगर इसके ऊपर भगवान की प्रेम के लिए प्रयास करें तो जिन जिन देवताओं से जिन जिन विभूतियों को प्राप्त करने की हमारी इच्छा है जिन जिन देवताओं से वो प्राप्त होने वाली है वो हमारे जीवन द्वार पर हमको बद्धांजलि अपनी सारी विभूतियां लेकर प्रस्तुत करें देने के लिए प्राप्त हो जाए। ये भगवान की भक्ति का वैशिष्ट तथापि उस कृष्ण प्रेम में श्री महाप्रभु एक अपूर्वतम प्रकाश करने के लिए कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व सभा कृष्णेर कृष्णा कृष्ण प्रेमेर संबंध जहाँ प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध हो सही माने कृष्णे मोर नहीं प्रेम बंध हो। श्री भरतलाल जी महाराज प्रेम मूर्ति होने के बाद भी मानो भीख त्याग ने धर्म आर्थ पान करें पर सीताराम चरण रति बोले अंतिम बड़ा अनुग्रह होने श्रीमन महाप्रभु जब चरण ने कहा कि मुझे दुर्लभतम प्रेम कैसे प्राप्त हो तो हर्ष ने प्रभु कहे सुन रामानंद राय नाम संकीर्तन कलो परम उपमा। श्रीमन महाप्रभु अभी निराश थे उदास थे कि मुझमें कृष्ण प्रेम नहीं है, अब कृष्ण प्रेम के बिना तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ है दरिद्र है। और अभी उनको संस्मृत हुआ कि अरे कृष्ण प्रेम मुझ में नहीं है लेकिन उसको प्रदान करने वाला कली काल में नाम संकीर्तन को परम उपाय जब प्राप्त है तो तभी महाप्रभु जी के द्वारा उस नाम संकीर्तन की महिमा प्रकट हुई है। अंतलीला में गंभीरा में इस नाम की महिमा को श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट किया गया जब कृष्ण प्रेम के अभाव में वो अपने को बड़ा जो है वो मार्जन से प्रोसेस से लेकर आनंद का बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्म संलग्नम परम विजयते श्री कृष्ण संग की चारा एक ही शिष्टाष्टक के श्लोक में उसका समग्र प्रोसेस जो है श्रीमद महाप्रभु जी के द्वारा प्रोसेस और उसके द्वारा होने वाली उपलब्धि का संकेतन हो गया। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्म संलग्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। हमको सर्वतो भावे जो रस में सर्वपूर्ण कर सकता है हमारे महाराज श्री परम गुरुदेव प्रभु कहा करते हैं, भैया मिश्री से मुंह मीठा होता है, नाम भगवान से जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो हम ही मिश्री की तरह मीठे हैं। ये सब संत गुरुजन मिश्री की तरह मीठे हैं, जब इनकी वाणी की मंदाक्षी से कुछ प्रवाहित होता है, निर्संकल्प जीवित होता है, करनाभि जी के श्लोक हो चाहे श्री सूरदास जी की पदावली हो, गोसाई जी की ये सब दोहावली हो, कवितावली हो या श्री रामचरितमानस है, ये सब उनके द्वारा आस्वादित रस है जो इन पदावली की पंक्तियों में हमें प्राप्त हो। मीरा जी का रस ये मिश्री हो गए, नाम का फल क्या है कि हमें ही मिश्री बना दे। सर्व आत्म संलग्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम सर्वप्रथम चेतो दर्पण चित्र के दर्पण के ऊपर चित्र के ऊपर अज्ञान का वर्ण माया का वर्ण शास्त्र गुरु कृपा है यदि कृष्ण गुरु कहे से जीव निस्तर माया का हरे छाड़ो। श्री कवि महाराज जी कह रहे थे गुरु जगत की गुरु करने की क्या अपेक्षा है, श्रीमन महाप्रभु चरण कहा शास्त्र गुरु कृपा है यदि कृष्ण गुरु कहे। एक शास्त्र बड़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र इनकी कृपा से अगर कोई कृष्ण सन्मुख होता है और श्री कृष्ण सन्मुख होता है प्रणत देही नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम प्रणत जनों के पापों का कर्षण करने करने वाले हमारे परम आराध्य प्रभु कहते हैं प्रणत जन कौन है जो नाम आश्रित है, नाम जापक है, नाम अनिष्ट है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वही जन प्रणत जन है प्रणत आत्म प्रणत आत्म प्रणत जेतो प्रणत देही नाम पाप कर्षण श्री जेतो दर्पण हमारा सब दुखों का कारण चाहे वो भौतिक है चाहे वो मानसिक है चाहे वो आदि दैविक है सबका कारण जो है वो अज्ञान वो सकल ज्ञान ही कर भूला। हमारे महाराज जी कहते हैं मोह भी नहीं है उस जानने की इच्छा का अभाव का नाम ही मोह। अगर कहीं अज्ञान है तो उसकी निवृत्ति कराने वाला उपाय है, लेकिन जब उसकी निवृत्ति के उपाय में भी हम प्रमाद करते हैं उसी का नाम मोह है और वही सकल व्याधि कर भूला है। सुख है सब जगह सुख है और कहीं भी सुख नहीं है सुख है अगर हमारे पास दृष्टिकोण है, सुख नहीं है अगर दृष्टिकोण नहीं। परीक्षित के पास दृष्टिकोण है सात दिन में उस तक्षक के दर्शन से भी वो अपने को बड़ा बड़भागी मानते हैं और आचार्य चरण सुखदेव जी के चरणों में सात दिन के मृत्यु के समाचार को ही जीवन का परम श्रेय बना ले। राज्यो मोक्षम भिक्षुरा धाता भी विस्मिता सत्य लोके गुलाम बनत्वा दुर्यत साधनं मया लघुम्यानि जातानि गौरवेनि न महत्वदा सीतला सर्वे विस्मयं परमेयो मेरी रे भगवत रूपम शास्त्रम कलौ पठना विस्मिता स्मृतो वैकुंठ। श्री ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया लेकिन वृक्षित के पास दृष्टि भगवान का नाम हमें दृष्टि प्रदान करे हमारा अज्ञान निवृत्त हमारी सोच अज्ञान जगत सब जगह के किसी को कहीं भी सुख मिल सकता है। सुख न किसी पर आधारित है सुख दृष्टिकोण पर आधारित है। दृष्टिकोण को जो निष्ठा है निष्ठापूर्ण दृष्टिकोण और निष्ठा को परिपक्व करने वाला आदव श्रद्धा से शुरू हुआ ये क्रम आगे जब निष्ठा पद जाता है तो एक ऐसी दृष्टि मिलती है जिसमें आनंद की दृष्टि कभी रुकती नहीं। सब सृष्टि बदलने को लगे है, लेकिन आनंद का रहस्य उस दृष्टि में है जिससे आनंद की दृष्टि हो, और वह दृष्टि प्रदान करने वाला, ज्ञान से मुक्त कर देने वाला ये भगवान का नाम संकीर्तन है। ध्रुव जी को दृष्टि दिया उसकी माता ने, पर प्रभु के द्वारा का हमने सुना कि देख बेटा बात चाहे वो माता ने कही है कि मेरे पेट से जन्म लाओ, एक तो ये उपाय था वो तो तुम नहीं कर सके, दूसरा विकल्प है कि तुम नारायण आराधन करो, नारायण अर्चन करो, अगर नारायण अर्चन करोगे तो पिता की गोद में तुम बैठने की इच्छा क्या करोगे, पिता तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारे पीछे लग जाए। उनका माता जी फिर तो दूसरा विकल्प सही। तो जब माता जी के लिए कहा कि मुझे भी माता ने नहीं कहा है, तो श्री सुनीति जी ने कहा हे ध्रुव बात चाहे कि माता ने कही है लेकिन बात अक्षर ये दृष्टि को ही ध्रुव जी ये उस परम इतने बड़े स्नेह की प्राप्ति का कारण जिसके पास है वो दृष्टि कौन है। मीरा जी को कोई व्यथा नहीं, मीरा जी के पास दृष्टि कौन है। प्रहलाद जी कभी दुखी नहीं, तब साधु मन में असुर बने थे ही नाम सदा समन विघ्न धियान सदा प्राप्त, तब साधु मन में असुर बने पिताजी साधु जनों का मान्य ही है असुर बने पिताजी को प्रणाम करते तो ये मेरा बड़ा भारी काम था इसको चेक करना कि बाकी मुझे उद्वेग नहीं होता, ये मेरे कृपा में पिता ने कर दिया, ऐसे मेरे कृपा में पिता की जय हो जिन्होंने मुझे पहाड़ से गिराकर विष से विष को मिला करके और भूतों के डेरे में मुझे छोड़कर मुझे सब प्रकार से उद्विघन करना चाहा, लेकिन धन्य है जय हो परम विजयी श्री कृष्ण संकीर्तनम जिससे मुझे उद्वेग नहीं हुआ। ये मेरा बड़ा भारी काम था, उपक्रम था जो भगवान मेरे पिता परम परम गुरुदेव तुल्य मेरे पिता श्री ने कर दिया, इसलिए मैं तो अपने पिताजी का बड़ा कृतज्ञ हूँ। पिताजी के दंड से पिताजी के इन सब प्रकार से मुझे मारने के उपक्रम में दुखी होने वाली से तो बात ही नहीं। हरिदास ठाकुर के लिए जब 22 बाजारों में इस प्रकार उनको मारा गया तो ठाकुर से पूछा प्रभु कि आप भगवान का नाम करने वाले आपके लिए इतना कष्ट हुआ, ये कैसे इसको कैसे जस्टिफाइड करोगे। उनका मैंने काजी के मुख से नाम की निंदा सुनी थी, उसका बहुत बड़ा दंड था, लेकिन भगवान ने तो इस महाराज थोड़े से कूड़े की बात से ही सब कर दिया। ए सब जने कृष्ण करम प्रसाद मोरे द्रोहे नहि के सभा अपराध, खंपायु मगने सलिलम महिंच ये दृष्टि कौन दे रहे। भगवान का नाम है हमको सब जगह एक बड़ी शान, एक सब प्रकार से भगवान की अनुग्रह भगवान की कृपा भगवान का ही सानिध्य अनुभव कराने वाला दृष्टिकोण दे दे, ये जिसे प्राप्त होगा ये नाम भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। क्योंकि भागवत जी में कह दिया गया कि भक्ति के पुत्र ही ज्ञान और वैराग्य है, ये ऐसे बच्चे हैं जो बिना माता के रहते जब तक भक्ति नहीं होगी, जिसको अभिधेय तत्व के रूप में भी कहा सब प्रकार से कहा गया, और वो भक्ति कभी काल की भक्ति है। कार पथ्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन मेरा प्राण भक्ति होए प्रेम और श्री परीक्षित महाराज क्यों उस कली काल का वध नहीं किया, उसके विषय में भागवत जी में बताया गया यत फलम नास्ति रक्षा न योगे समाधि ना भव महादावाग्नि। अरे आग तो वहां लगी है तो आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड चाहिए, उनका नहीं, भव महादावाग्नि को बुझाने वाला भगवान का नाम संकीर्तन है। जैसे ही हमारे अज्ञान की हमारे जीवन से निवृत्ति होगी और वो भगवान के नाम संकीर्तन से सब जगह सब समय प्रभु की कृपा का दर्शन करते हुए एक बड़ी समाधि अवस्था प्राप्त होगी, निरपराध स्वभाव प्राप्त होगा, बड़ा एक शांत सुखी जीवन हमारा हो जाएगा, सहज स्वाभाविक जीवन हो जाएगा, जिसको सौम्य कहकर भगवान ने उद्धव जी को कहा सौम्य अर्जुन हे अर्जुन उद्धव ऐसा जीवन, और उसके बाद भजन करेंगे हम महादावा निर्माण। हमारे प्रहलाद जी प्रभु कहते हैं कि जब वन में दावानल लगती है, वन की अग्नि को दावानल कहते हैं, और वन में अग्नि कोई लगाता नहीं है, बांस के वृक्षों के घर्षण से अग्नि लगती है। इसी प्रकार जो हमारे जीवन में भी जो कलेश है, जो अंतर द्वंद्व है, अंतर उद्वेग है, ये किसी ने दिए हुए नहीं, हमारे अज्ञान की पूर्ण सोच के द्वारा, अज्ञान पूर्ण चर्चा के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। और जैसे दावानल को कोई फायर क्रिएट नहीं बुझा सकता, दावानल तब उगती है जब आकाश से घटाटोप वर्षा होती है, इसी प्रकार जीवन के अंदर की दावानल तब उगेगी जब कृष्ण प्रेम के नेत्रों का प्रभाव, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए नयन गगन अश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा उद्गैर निचितम बहु कदा तपनां ग्रहणे भविष्य किस भांति सराहे उसे मुख से सुख जो शरणागत होने में है मुख से निकले हरे कृष्ण हरे कुछ स्वाद नया किस होने में है अति शीतलता अति सुंदरता इन आंसुओं से मुख धोने ब्रजराज योग में रोते हुए सुख अद्भुत प्राणों को खोने में है दीन दयाल राम ब्रजराज से नाता जुड़ा चढ़ है फिर जल की क्या परवाह करे बस याद में रोते रहे उनकी पलकों पर अश्रु प्रवाह करे जितनी वह दूर रहे हम सो उतनी हम उनकी चाह करे सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है हम आह करे वो वाह करे बलि जाओ सदा इन नैनन पर बलिहारी छटा पर होती रहो कभी भूलो ना नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागृत स्वप्न या सोते रहो हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करो इन आंसुओं से मुख धोती रहो ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस मैं यूं ही निरंतर रोती रहो उत्तर अपने अक्रूर जी को ठाकुर जी को दे दिया लेकिन तुम जो लेने आए हो नहीं देंगे नहीं देंगी तब इन्हें कहा गोपियों में कुछ लेने नहीं आया मैं भगवान का संदेश देने आया नहीं तुम लेने आए मैं क्या लेने आया तुम हमारे नेत्रों के प्रेम अश्रु लेने आए तुम्हारी ज्ञान की चर्चा से भक्ति नाम की योगम में नानी सर्वात्मा को चिताओ इस चर्चा से अब को आराधे ईश ईश्वर की उपासना का तुम्हारे द्वारा अगर हमने श्रवण कर लिया तो हमारे प्रेम आंसू सूख जाएंगे और ये प्रेम आंसू हम नहीं देंगे भगवान को दे दिया गुरु को उद्धव तुझे प्रेम आंसू नहीं देंगे जीवन की अमूल्य संपदा वहां पर वो आगे चलकर भगवान से इसकी याचना किया है ध्रुव जी याचना करते हैं महाराज गोविंद के चरणों में ये सब जीवन का परम जो सहयोग है ठाकुर जी की प्राप्ति के कितने उपाय ठाकुर जी में है लेकिन ठाकुर सर्व मान्य एक उपाय है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम।
बहुत ठीक बहुत
आज्ञा का पालन करते हुए पहले जैसे टीचर पढ़ा देते कहते सुनाओ क्या पढ़ाया है उसी तरह आपकी आज्ञा का पालन किया है। मुझे कुछ नहीं आता मेरी किसी भी दृष्टता के लिए आपको क्षमा याचना।
बहुत सुंदर। अभी हम लोग कृष्ण लीलाओं के माध्यम से भक्ति के संबंध में हम लोग बहुत कुछ आलोचना किया है। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते सखाओं के साथ में मधुबन के तालवन के निकट पहुंचे। बच्चों ने कहा जी ताल की सुगंध बड़ी आ रही है चलो हम लोग ताल खाएंगे। वहां पर एक ढेनका सर नामक कंस का अनुचर रहता था उस जंगल में। उस ताल के बगीचे में किसी को नहीं आने देता मार डालता था। उसका सारा फल कंस के लिए जाता था। बलदेव जी और कृष्ण उनको लेकर के वहां गए। जाते ही धनकासुर ने उन पर आक्रमण किया। बलदेव जी ने उसके पिछले पैरों को घुमाया और ताल के वृक्ष के ऊपर में दे मारा। वो तो मरा ही। एक एक वृक्ष गिरते गिरते सारे वृक्ष सब गिर गए और उसके जितने अनुचर थे धनकासुर के गधे सबको कृष्ण और बलदेव ने मार डाला। यहां पर बलदेव जी गुरु तत्व हैं। साधक जब भगवान का भजन करना आरंभ करता है उसमें अज्ञानता रहती है। अज्ञानता क्या? मैं शरीर हूं मैं ही ब्रह्म हूं। माया के वजह से मैं अपने को जीव समझ रहा हूं। कर्म से ही हमारा उन्नति होगी मुक्ति होगी ज्ञान से ही हमारी मुक्ति होगी। इस तरह की बहुत तरह की अज्ञानता होती है। उसका प्रतीक धेनुकासुर गधा है। जानवरों में सबसे अज्ञानी गधे को माना जाता है। गधे गधी का दुर्लभ्य खाते खाते भी उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते। मुख भले ही उनका मार से फूल जाए तभी उसके पीछे पीछे गधी के पीछे पीछे दौड़ते हैं। और जगत के जितने कपड़े धो जो मैले टैले हो गए हैं सबको पीठ पर धोता है और मूर्ख है उसके पीठ पर लाद कर गुड़ शक्कर चीनी कपड़े ले जाते हैं वो गधा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ये मूर्ख है। इस मूर्खता को बलदेव जी गुरु तत्व हैं। बिना गुरु के कभी भी अज्ञानता नहीं हो जा सकती है। तत्पश्चात कालियद्रह में कालियानाग का दमन करके उसके पानी को शुद्ध किया। तत्पश्चात बकासुर बगले का रूप धारण कर कृष्ण को मारना चाहता था। उतना का भाई था बदला लेना चाहता था। बगला जैसे किसी तालाब में एक पैर के ऊपर में खड़े होकर के अपने को साधु जैसा मानता है चुपचाप और जो ही मछली की कोई चाल आई बस मछली को झट पकड़ लेता है। ये कपटता है। ऐसे ही भगवान का भजन करते हुए यदि कोई मुक्ति की इच्छा करता है कोई संसारी कामनाओं को के लिए कामना करता है भगवान उस कपटता को दूर करते हैं। जब तक ये कपटता नहीं होगी शुद्ध भक्ति नहीं होगी उसे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका बड़ा भाई जब सुना अघासुर ने जे कृष्ण ने हमारे भाई को और भगनी दोनों को मार डाला है वो भी बड़ा अजगर का रूप धारण करके आया, बहुत विशाल पर्वत के समान। सखालों को चारण करने के समय में कुछ आगे बढ़ गए थे गौओं को लेकर, कृष्ण कुछ पीछे रह गए थे। वो लोग सोच रहे थे, अरे ये सर्प जैसा मालूम होता है या पहाड़ी है, देखो ना ये कंदरा जैसा उसका मुख लगता है, ये पर्वत की कंदरा है मालूम होता है, ये सर्प की ये कंदरा है, उसकी जीभ लप लपाती हुई सामने सुंदर कालीन के समय में समान दिख पड़ती है, इसके दाढ़ी मानो पर्वत की शिखाएं हैं, चलो तो देखे इसके भीतर में क्या है। किसी ने कहा यदि ये कोई सर्प ही हुआ तो कोई चिंता नहीं, हमारा कन्हैया तो है वो हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण उनको मना करने जा रहा है कि मत प्रवेश करो, किंतु वो घुस गए कृष्ण के बल पर। जब घुस गए तो उसके बीच से वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। कृष्ण ने देखा जी हमारे सखा लोग चले गए उसके मुख के अंदर में, उनको मना नहीं कर सका, तो चलो मैं खुद भी चलूं। ऐसा कर करके वो चले, तब तक वो अघासुर अपना मुख खुले रखा था, आकाश में उसका एक होठ दूसरा होठ पृथ्वी में। कृष्ण उसके अंदर में घुसे ज्यों ही तो ये अब अच्छा हुआ, और सब देवता लोग त्राही त्राही कर उठे, और असुर लोगों ने जय जयकार, कंस का जय अघासुर का जय जयकार बोलना आरंभ किया। कृष्ण लाल गोले की तरफ उसके गले में अटक गए, न श्वास आगे आए न पीछे आए, और ब्रह्मरंध्र यहीं से फट करके उसका उसकी आत्मा निकल गई, आकाश में घूमने लगी। कृष्ण ने अपनी दया भरी दृष्टि से गोप बालकों सखाओं को जिला दिया और उनको बाहर किया, ज्यों आए वो ज्योति कृष्ण के चरणों में समा गई। देवता लोग जय जयकार करने लगे, उनका शब्द सुनकर के ब्रह्मा जी आए, देखा रही ये तो भगवान है, मैं इनकी और कुछ लीलाएं देखूं तो मैं इनकी लीलाएं देख नहीं सका। तब क्या हुआ अभी आपको रसानंद ब्रह्मचारी जी संक्षेप में 20 मिनट में इस कथा का वर्णन करेंगे। आगे जाइए और आगे अधिक लंबा मत खींचिए।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सिंहासने गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों के बल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव महाराज मुझे आदेश दे हैं ब्रह्म मोहन लीला की वर्णना करने के लिए। अभी अभी आप लोगों को स्वागत किया कैसे भगवान अभास को वध किया है। जब भगवान अभास को वध किया तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए थे। भगवान को बड़े स्वर्ग का पारिजात का पुष्प उन्होंने बौछार किया, बौछार करते हुए
भगवान कृष्ण कन्हैया की बड़े जोर से जयकार लगाए, बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब उन्होंने बड़े जय जयकार लगाए, इतने में वह जयकार ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा ये देवता लोग क्यों जय जयकार कर रहे हैं। अभी देव ब्रह्मा भी उतर करके आए देखने के लिए, उन्होंने देखा भगवान कृष्ण के से आकाश में बदल दिया। उन्होंने अवेद अद्भुत लीला देखा, जब भगवान उनको मुखार बिंदु से दिखले और भास्कर का ब्रह्म तल फट करके एक ज्योति आकाश में मंडरा रहा था और वह ज्योति भगवान का चरण में ही समा गया। इसको देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य लगा, ये छोटा सा बालक कौन है जो ब्रह्म ज्योति जिनका चरण ही समा गया। इसलिए जब कृष्ण फिर जाकर के सखाओं को साथ में जब बैठ करके कलवा कर रहे थे, सखा लोग अपना घर से सब कलवा लाते और सखा लोग पहले खा करके सबके सब कन्या को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी को देखा ये कैसे भगवान है जिनको झुटन मुटन की कुछ बताए नहीं, क्योंकि वो नारायण का भक्त है और ऐश्वर्य मार्ग में उपासना करते हैं। आप लोग जगन्नाथपुरी में जब भगवान को प्रसाद बनाते हैं, मुंह में कपड़ा बांध करके बड़े सावधान से, कहीं मुंह का कोई थूक गिर नहीं जाए, बड़े सावधान से प्रसाद बनाते हैं। नारायण इस बात का ऐश्वर्य मार्ग को उतार होता है। यदि ये कैसे भगवान है इस सभी का झुटन कहा रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी मोहित हो गए और थोड़ी आगे निकाल देने के लिए इच्छा है। यहाँ पर बताए कहते ब्रह्मा कौन है, कहते ब्रह्मा एक सर्वविज्ञ है। ब्रह्मा का तात्पर्य है जो सब कुछ जानते हैं, वे ब्रह्मा है, वे हमारे आदि गुरु भी है। लेकिन वे भी मोहित हो गए, ये भगवान कुछ विशेष इच्छा है, नहीं तो ब्रह्मा मोहित होने वाले नहीं। भगवान ब्रह्मा के द्वारा, इसलिए हमारे चैतन्य महाभारत में बताया जब तो देखो चैतन्य अरि से सब चैतन्य लीला पुष्टि करे। जिन जिनियों को भगवान का शत्रु रूप में हम देखते हैं, कहते शत्रु नहीं तत्वतः भगवान की लीला को ये पुष्टि करने वाले, कंस नहीं होते तो कृष्ण की मां इतनी लीला होती है। इसलिए अभी ब्रह्मा जी मोहित होकर के आके और कुछ लीला देखने के लिए उन्होंने उनका बछड़े को उन्होंने चुराया। सखाओं ने देखा ये बछड़े कहाँ चले गए, इतने में खड़े होकर जब ढूंढने के लिए गए, कृष्ण ने मना की तुम लोग बैठो मैं देखता हूँ, लेकिन सुने नहीं, सबके सब चले गए। जब चले गए इतने में ब्रह्मा बछड़ों को लेकर के लिए गुफा में मोह निद्रा में उनको सुला दिया था। फिर जब सखा लोग गए, फिर सखाओं को भी ब्रह्मा जी ने उनको भी हरण करके उनको भी मोह निद्रा में सुला दिया। अभी कृष्ण अभी सखाओं को उठने के लिए उसी हाथ में दही चावल है और टिट्टी का आचार, आम के आचार, उसको लेकर भगवान ढूंढ रहे हैं मेरे सखा कहाँ है, मेरे बछड़े कहाँ, अभी कहीं मिले ही नहीं। इतने में भगवान की जो इच्छा शक्ति झट भगवान के हृदय में प्रकाश होकर के उनको स्फूर्ति कराया, ब्रह्मा जी आपको कुछ लीला देखने के लिए, आप लीला को समझ नहीं पाए, आगे कुछ लीला देखने के लिए उनको हरण जाए। इतने में भगवान कृष्ण जैसे बछड़े थे, जैसे सखाए थे, जिसका जैसे लगती थी, जिसका जैसे रंग था, कृष्ण स्वयं धारण करते हैं। धारण करते हुए एक साल तक भगवान की लीला है। दूसरे पुराण में कहीं कहीं आता है ब्रह्मा जब सखा और बछड़ों को उन्होंने चुरा करके वे ब्रह्मलोक में गए, इतने में भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा बन करके जो दरबार थे, बोले देखो हमने देखा है मेरे जैसे कुछ बहुरूपिया घूमते हुए, मेरे जैसे अगर कोई आए उनका अंतर में दूसरी मत दिया करना। और कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा का गति पर बैठ गए। जब स्वयं ब्रह्मा इधर से गए अब अंदर में जाना चाहते थे, इतने में जो स्वयं द्वारपाल थे ब्रह्मा को बड़ी डांट लगाए कि तुम्हारा प्रभु सही बोल रहे थे, कुछ बहुरूपिया को मैंने देखा। भाई, चार से लगा के तुम कहां से आ गए? हमारा प्रभु तो अंतर में बैठ गए, तुम कहां से आ गए? ब्रह्मा देवता ने जो गड़बड़ी किया ही, उनको मानने के लिए स्वीकार की, लेकिन जब देखा उनका द्वारपाल नहीं उनको शासन कर रहे, दांत लगा रहे, ब्रह्मा तो घबरा गए, मेरे रूप धारण करके कौन फिर बैठ गया? ब्रह्मा जी इधर से उधर उधर से इधर आते आते इसी जगत में एक साल बीत गया। ब्रह्मा जब आए फिर देखा जिन्हों को ब्रह्मा ने चुरा कर गुफा में मोहमित्रा ने सुला दिया था, देखा तो कृष्णा एक साल पहले जैसे सखा और बच्चों को लेने के जैसे लीला कर गए थे, अभी भी वैसे लीला कर रहे थे। ब्रह्मा तो चक्कर पड़ गए, ये क्या, मैं सभी को मैंने छुपा दिया, करे कृष्ण क्या मांस ले आए? फिर ब्रह्मा जा करके देखते हैं, कहते नहीं वो सबके सब सोए हुए। फिर इधर देखा, कहते नहीं यहाँ, फिर यहाँ पर ब्रह्मा एकदम सोच नहीं सके कि क्या हो रहा है, मैंने क्या देख रहा हूँ। ब्रह्मा का चाल से उधर दो से इधर दो से एक साथ जब देखा, भगवान ने मुझे खाया आप ब्रह्म स्तंभ सर्वत्र, उनको एक नारायण से वो सृष्टि हुए थे, उन्होंने सर्वत्र देखा, जितने सारे बचने जितने सारे सखा सब के सब सब चतुर्भुज सब नारायण। ब्रह्मा ये सब चीज को देख करके कहते तब ये है कौन? तो ब्रह्मा समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, ये मेरे पिता का पिता जी का पिता जी का पिता ही है। तब फिर ब्रह्मा जी आकर के भगवान को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान को 40 श्लोकों से उन्होंने स्तुति की है, वो हमारा आदि गुरु, और एक श्लोक में दिव्य दिव्य तत्व दर्शन और रस दर्शन को उन्होंने स्थापन की है। उनका पहला श्लोक है कहते नवमी जते अभ्रबुषे तलितांबराय उनको पता चला गया कि कृष्ण ही सर्व कारण पता है, इसलिए ब्रह्मा जी का ब्रह्म स्तुति में जहाँ पर ब्रह्म संहिता में का पहला श्लोक में ब्रह्मा वहां पर भी बताए कहते कृष्ण कौन है, कहते ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, इस सारे कारण का भी मूल कारण यही कृष्ण है। दिखने में तो छोटा सा गैया के पीछे पीछे दौड़ते हम मक्खन चुराते हैं, लेकिन ये कोई साधारण नहीं, इस सारे कारण का कारण ये भगवान कृष्ण है। इसलिए कहते नाम में कहते हे प्रभु हे मेरे पूज्य आपका चरण में हम प्रणाम करते हैं, कि भगवान का चरण में तुम प्रणाम करते हैं, कि भगवान को प्रणाम करने का विशेष महत्व है। शास्त्र में बताया सत्क्रिय की प्रणाम कृष्णस्य मातुस्तर विवेदने, अगर एक बार किसी ने भगवान का चरण में सिर झुका दिया नतमस्तक कर दिया तो उसको दोबारा कभी मातृगर्भ में प्रवेश करना नहीं पड़ता है, भैया की दूध उसको पीना नहीं पड़ता है। इसलिए जब महाराज जी अपना दूतों को करते हैं जीवान भक्ति भगवत नाम जय चत सत स्मृति जत चरणार विंद कृष्णाय नमति जत सिर कदापि तान अनर्थम, उन्होंने दुष्टों को पकड़ पकड़ कर ले आना जो जीवा में कभी भगवान का कीर्तन नहीं करते, भगवान का चरण में नतमस्तक नहीं करते, इसलिए उन उन पापियों को पकड़ करके ले आना। इसलिए भगवान का चरण इसलिए नवमी, नवमी मतलब आपका चरण में हम नमस्कार करते हैं, इसलिए नमस्कार का मतलब होता है अहंकार परित्याग करके प्रभु को चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत। एक संत एक अच्छी कथा सुना, प्रभु को प्रणाम करने का विशेष महत्व क्या है, जैसे स्टाम्प देखे होंगे स्टाम्प में उसमें उल्टा रहता है, जब किसी पेड़ के ऊपर मारो तो सीधा हो जाता है, अगर हमारा भाग्य पर कुछ उल्टा लिखा हुआ होगा लेकिन जब प्रभु को चरण में हम प्रणाम कर दिया होगा वो उल्टा भी सीधा हो जाएगा, इसलिए प्रभु को चरण में प्रणाम करने पर हमारे सारे अनर्थ अपराध सब पाप लग जाता है, मंगलमय हो जाता है। इसलिए कहते हैं प्रभु न नवमी नव मीटर से अभ्र बपू से कहते भगवान का शरीर का रंग कैसे कहते बरसाल मेघ जैसे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जब हम कहते हैं तब उन्होंने भगवान को अभ्र बपू से बोल कर क्यों बोले कि जैसे आकाश बरसाल मेघ आने पर जैसे उसका ठंडी ठंडी हवा बहने लगती और सभी का हृदय शीतल कर देता है कहते हे प्रभु उसी तरह आपका चरण में अपराध करने के नाते मेरे हृदय में आग जल गई लेकिन आपका स्वरूप कैसे है कहते आपका स्वरूप बरसात मेघ जैसे आपका रह रहे हैं जैसे बरसात मेघ आने पर सभी का हृदय शीतल कर देता है उसी तरह हे प्रभु और बरसात में जब बारिश बरसती है वो कोई गंदा पवित्र पवित्र स्थान नहीं देखता है सर्वत्र बराबर रूप में बारिश होती है उसी तरह हम अपराध होने पर भी हम पापी होने पर भी आप तो अभ्र पुरुष हो आपका शरीर तो बरसात में जैसे आप सर्वत्र आपका दृष्टि समान है इसलिए मैं अपराध होने पर भी मेरे अपराध को माफ कर दो दूसरा कारण बताए कि जैसे आकाश में जो चातक एक चिड़िया है वो चिड़िया किसी नदी का नहीं तो किसी कुआ का पानी नहीं पीता है वो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है जैसे आकाश में मेघ आने पर जैसे चातक प्यासा 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 बोलता है अब वो स्वाति नक्षत्र को पानी केवल पीता है क्योंकि उसी तरह के प्रभु आपका शरीर अभ्र बपुष है इसलिए मैं जैसे चातक हूँ केवल आपका ही चातक जैसे कहीं का पानी नहीं पीता है उसी तरह प्रभु आपका कृपा ही मेरा जीवन का सर्वस्व है इसलिए प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा करो इसलिए नौ मीटर से अभ्र बपुष से तड़ी नंबर आए कहते भगवान कौन सा वस्त्र धारण करके रखेंगे कहते भगवान पीताम्बर धारण करते हैं कि जिस आकाश में जैसे बरसात मेघ में जैसे बिजली चमकने पर उसका शोभा बढ़ जाती है कहते उसी तरह देव प्रभु आपका शरीर में आप तो वैसे सुंदर है हाँ इसलिए सुंदर ठीक असुंदर हो इसलिए आप तो सुंदर से परम सुंदर हो लेकिन होने पर भी आपका शरीर में जो पीताम्बर और भी शोभा बढ़ाने वाले कहते भगवान पीताम्बर क्यों धारण किया बहुत सारे वस्त्र है कहते पीताम्बर ये राधा रानी का प्रतीक है राधा रानी का रंग कैसे कहते तप्त कांचन भगवान मान भगवान राधा जी को प्रति विशेष प्रेम को भगवान यहाँ प्रकाश कर रहे हैं इसलिए कहते नौ मिनट थे अभर बहु से तड़ी तब कर आए गुंजा बतन से कहते भगवान क्या था कौन सा फल धारण करके रखे हैं अपना कर्ण भूषण किया कहते गुंजा माला और गुंजा में बने हुए कर्ण का फूल है कहते भगवान गुंजा माला क्यों धारण किया तो दो कारण बताए भगवान यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर मुझे संतुष्ट करना चाहते हो कोई ज्यादा वस्तु की जरूरत नहीं मुझे संतुष्ट करने के लिए इसलिए कृष्ण गीता में बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्ता प्रयोजन तदम भक्त ऊपर भी तदस्नामी प्रजतात्म अगर भक्ति पूर्वक हमने चार चीज बताए पत्र पुष्प फल और जल कहते ये चार चीज भगवान बताए जो बिना पैसा में मिलता है पत्र पत्ते के लिए पैसा थोड़ी चाहिए नहीं चाहिए पुष्प कहीं भी तोड़ कर मिले या फल पेड़ में कहीं है अभी तो फल के लिए पैसा देना पड़ता कहीं पैसा देना नहीं पड़ता था और तो यह मतलब पानी इसलिए भगवान ने कहा मेरे को अगर प्रसन्न करना चाहते हो कोई बढ़िया ज्यादा चीज मुझे दे के संतुष्ट करना पड़ेगा ऐसे नहीं जो बिना पैसा का चीज है अगर उसको हृदय से भावना युक्त होकर अगर मुझे प्रदान करोगे मैं इसको ग्रहण करूंगा इसलिए भगवान बने सजे हाँ इसलिए भगवान गुंजामाला गुंजामाला की प्रभु धारण करते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को उनने दो चीज दिया था एक में तो उन्होंने गिरिराज शिला दिया रघुनाथ ये गिरिराज शिला साक्षात भगवान कृष्ण और ये गुंजा माला ये राधा रानी की प्रतीक है इसलिए मैं तुमको राधा और कृष्ण दिया इसलिए मानव भगवान राधा रानी को भी अपना गले में हार रूप में प्रभु कर्ण भूषण रूप में प्रभु धारण करके रखे कहते उनका वस्त्र उनका जो ड्रेस किस चीज में कहते बने सजे बने का पत्ते फूलों के द्वारा इसलिए भगवान सिखा देते हैं कहते मैं वैकुंठ में नारायण रूप में जब रहता हूँ पता नहीं भक्त लोग मुझे कितने कीमती कीमती ड्रेस को श्रृंगार करते हैं लेकिन जब मैं ब्रज में रहता हूँ सखा लोग ब्रज गोपियां जो गणपुर और पत्तों को भरा कर जब सजाती वो स्वर्ग का नंदन कामिनी से भी वो पुष्प से भी ज्यादा मुझे सुखदायी यही बन्यसरज वृंदावन का फल फूल से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। बन्यसरज विशाल वेणु भगवान वंशधर में करते बहुत सारी कारण विशाल वेणु बन्यसरज कवल यंत्र भगवान के हाथ में किया था इसलिए भगवान इसको जरा शिक्षा देते थे जितने भी मेरे भोजन बहुत है लेकिन जो दूध भात है तो दही जो चावल ये मेरे बड़ा प्रिय है इसलिए को कौन है कहते पशु पान को जाय कहते पशु का मतलब पशु को जो पान करते हैं जो नंद बाबा उनका जो अंग से जन्म हुए हैं मतलब जो नंद नंदन है तो यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थी कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा पर आदि गुरु है। साधारण भागवत ग्रंथ पढ़ो सारा दुनिया उनको यही बोलेंगे देवकी नंदन आय नंद कुमार आय गोविंदाय नमन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन आय ये तो वसुदेव का नंदन है तो देवकी नंदन है। साधारण भागवत पढ़ो कृष्ण को कोई भी यशोदा नंदन नहीं बोलेगा क्योंकि यशोदा के तो बच्चे कोई वहां मतलब लड़की हुई थी कृष्ण तो जन्म की मथुरा कारागार में यहाँ पर आदि गुरु ब्रह्मा प्रथम श्लोक में स्थापन करते हैं कृष्णा नंद नंदन वे अंश रूप में मथुरा कंस कारागार में प्रकट हुए लेकिन पूर्ण तम रूप में वे जसोदा नंदन रूप में वे ब्रज में ही जन्म हुए इसलिए जसोदा नंदन नंद नंदन ये पशुपान में जाए हैं। इसलिए ब्रह्मा प्रथम श्लोक में भगवान की बड़ी दिव्यता को उन्हें स्थापन करते हैं उनको एक एक श्लोक अपूर्व है फिर उन्हें एक श्लोक में कहते हैं ज्ञान प्रयास मुद्वास नमन्ते वजिवन्ति सन्मुखरीकं भवति वर्तम ये श्लोक तो द्वारा कहते हैं जब भगवान ज्ञान को द्वारा नहीं मिलते कल महाराज बता रहे थे ज्ञान के दो तरह का है जब एक में तो भगवान को जो निराकार में विशेष ज्योति स्वरूप को द्वारा जो उपासना करते हैं जो ज्ञानी लोग वो ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं भगवान केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन एक ही तत्व है लेकिन बदलते तत्व तो विदित तत्व जज ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति शब्दति तत् एक तत्व ही वो तीन रूप में प्रतिभात होते हैं। ज्ञानी लोग उनको निराकार रूप में दर्शन करते हैं योगी अपना योग समाधि के द्वारा उनको परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं भक्त अपना भक्ति नेत्र के द्वारा उनको पूर्ण ब्रह्म श्याम सुंदर अतुल कहते ज्योति अभ्यंतर मध्य अतुल श्याम सुंदर रूपम उसको ही भक्त लोग उसका श्याम सुंदर रूप में दर्शन करते हैं। तो एक चीज को हमने समझा है शास्त्र में आप लोग भी ये चीज को समझो कहते मार्केट में आम होता है बड़े सुंदर दशहरी चोसा एक राजा ने एक सेवक को बोला हमने सुना मार्केट में बड़े सुंदर आम आया देख करके आओ तो कैसे आम है तो उन्होंने देखा ढकेले के ऊपर सचमुच से पीले पीले रंग के बड़े सुंदर आम बिक रहा है उनने दूर से देख करके केवल आ गया बोले महाराज सचमुच बड़े सुंदर आम आया है तो हमने दूसरे सेवक को भेजा बोले तुम देख करके आओ आम कैसे है दूसरे सेवक जा करके ये तो केवल दूर से देख करके आ गया था ये थोड़ा नजदीक में जाकर उसको स्पर्श किया देखा सचमुच बड़ा नरम है बड़ा कोमल है उसको सुंघा भी देखा बड़ी खुशबू है फिर उन्होंने आकर बोले महाराज वास्तव में बड़े सुंदर आम आया तीसरे सेवक को भेजा तुम देख के आ तो तीसरे सेवक ने गया उन्होंने सुंघा भी और उसको देखा नरम भी है और उन्होंने बोले 5 किलो आम दो तो उन्होंने 5 किलो आम को लेकर के आए और ठंडे पानी में धोए और अमनिया करके ठाकुर को तुलसी पत्ता दे करके भोग लगाए और उन्होंने जब खाया बड़ा मीठा आम बड़े स्वादिष्ट आम देखो ये चीज को अच्छे से समझो कहते ये आम तीन लोगों को भी प्राप्त हुआ सभी को मिला एक ने तो दूर से देखा दूसरे जाकर के स्पर्श किया उसको सुंघा भी लेकिन तीसरा भी देखा लेकिन वो ला करके भगवान भोग ला कर पाया तीनों को मिला आम लेकिन तीनों को मिलने पर क्या बराबर रूप में मिला अब ये चीज को समझो कहते भगवान को जो ज्ञानी लोग केवल दूर से एक ब्रह्म चित्र रूप में जो दर्शन करते हैं और उसको ही देख करके उसको निराकार निर्विशेष मान करके वहां से वापस आ जाता है यदि पहला श्लोक है। लेकिन जो दूसरा अवतरण नजदीक गया, थोड़ा स्पर्श भी किया, उसको खुशबू भी लिया, वहां से आ गया, कभी ये कौन है, कभी ये योगी है। इसलिए कि तपस्वी अधिक योगी ज्ञानी को अपनी मदद दी, इसलिए ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, जो कि और थोड़ा नजदीक जाता है और उत्कृष्ट परिणाम करता है।
बहुत लंबा
पांच मिनट का अभी, लेकिन जो एकदम नजदीक गया, हाँ, उनको स्पर्श भी किया, उसको खुशबू भी लिया और उसको ला करके प्रसाद रूप में पाया, कहते ये कौन है, कहते भक्त है, जो कि साक्षात भगवान को प्राप्त करके उनको सेवा पूजा प्रसाद इनको संपूर्ण रूप में जो रस को प्राप्त करता है, कहते ये भक्त है। इसलिए किसी शास्त्र में नहीं बताया ज्ञानी का भगवान योगी का भगवान, हर शास्त्र में एक ही बात बताया भक्त का ही भगवान की, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए ब्रह्मा स्थापन करते हैं, ज्ञान को द्वारा भगवान नहीं मिलते, कहते मिलते ही कैसे, कहते स्थान स्थित स्मृति गता, जहाँ पर स्थान स्थित जहाँ पर साधु लोग रहते हैं, जहाँ पर उनको मुखार बिंद से कृष्ण कथा भी मंदाकिनी की नदी में रहती, अगर वो कृष्ण कथा भी नदी के द्वारा अगर कोई स्नान करे तो प्राय अजीत है, जिनको जितना बहुत कठिन है लेकिन वो अजीत भगवान को भी भक्त उनको भसीभूत कर लेते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे एक एक श्लोक के द्वारा उन्होंने दिव्य दिव्य उन्होंने भगवान की बड़ी दिव्यता के प्रकाश की विभूति की, लेकिन कहते भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे, किसी का चित्र वो हंसी नहीं रहे, इतने सुंदर सुंदर स्तुति कर रहा, उनने सोचा जरूर मेरे अंदर कुछ कमजोरी है। तब उन्होंने जब भगवान की स्तुति करते करते संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने एक ब्रजवासी का स्तुति किया, उस स्तुति में बोलते हैं अहो भाग्य नंद गोप ब्रज प्रसा जल मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कभी ब्रजवास होता भाग्य की बात क्या बताएंगे, इसलिए अहो अहो मतलब इतना भाग्य का कोई भी गुणा नहीं, जो साक्षात परमात्मा अनंत कोटि के सब ब्रह्मांड का जो मालिक, इसका बेटा बन गए, इसका पुत्र बन गए, इसका प्रियतम बन गए, जहाँ ब्रज लोग जहाँ सखा को झूठन खाते हैं, जिसका जो सारा दुनिया को कान पकड़ते हैं लेकिन उनको कान पकड़ के भैया दुष्टा उठा के बैठती है, जिनके पास सब प्रेम की भीख मांगते हैं लेकिन कृष्ण महापर श्रीमती राधा रानी के पास में ब्रज गोपियों के पास में स्मर धर अखंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पलह उदार बोल करके उनको पास में जब किंकर से पहुंच से फलदा पानी राधा रानी की बात छोड़ते उनको सखियों के पास में भी कृष्ण प्रेम भीख मांगते हैं। कभी ब्रजवासियों का महिमा क्या बताएंगे, ब्रह्मा जब इतने बोले ना कृष्ण को मुंह से हंसी आई, कृष्ण ने इतने में हंस दिया, तब ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण का कमजोरी कहां पर है, इनका कमजोरी मतलब भगवान को कोई संतुष्ट करना चाहते हो प्रभु कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, भगवान ने सिखा दिया मुझे अगर डायरेक्ट संतुष्ट करना चाहोगे तो मैं संतुष्ट नहीं होगा, अगर मेरे भक्त का अगर संतुष्ट कर दिया, मेरे भक्त का अगर सेवा कर दिया तो उसी में संतुष्ट हो जाता। फिर तो ब्रह्मा बोलते हैं जो बोलते हैं भगवान का तत्व तो हम जानते हैं, कहते जान देव जान तुमको जानने दो, मैं चतुर्मुख ब्रह्मा ये जगत को सृष्टि करता, कोई बोलते ना अरे वही कन्हैया जो गैया के पीछे पीछे दौड़ता है मक्खन चुराया उसको बात कर रहे हो ना, ब्रह्मा कहते हैं जगत का सृष्टि करता ब्रह्मा चार सिर है लेकिन मैं प्रभु जी का विभूति को एक कण भी प्रभु जी का विभूति को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए स्तुति करते हुए भगवान का चरण में सीधा लेटे गए। उन्होंने देखा कि मेरा एक शरीर ही एक सिर सिर और शरीर का एक भाग ही ये ब्रज रज को स्पर्श कर रहा है, पूरा अंग स्पर्श नहीं कर रहे। फिर जब ब्रह्मा जी लौट को उठाने लगे ब्रज रज में लौट को उठाने लगे और अपना वो जीवन को धन्य मान के उन्होंने वहां से वापस आ गए। ऐसे ब्रह्मा भगवान उसका बहुत सारे कारण गुरु जी अभी बताएंगे आपको। ब्रह्मा जी ने जो गोवत्स सखा वर्णन किया इसका असली तात्पर्य किया था, इसका मूल रहस्य क्या था, आप लोग इस चीज को गुरु जी के उदाहरण से सुनिए, इसका असली रहस्य बहुत बड़ी रहस्य है।
अभी श्रीमान रसानंद जी ने ब्रह्मा जी का मोह इत्यादि वर्णन किया, श्रीमद् भागवत में सर्वत्र भक्ति का उल्लेख है। भक्ति माने क्या? भगवान हमारे आराध्य हैं, हम जीव उनके नित्य सेवक हैं, और उन दोनों के बीच जो संबंध है वो भक्ति है। अभी हम माया से बद्ध हैं, भगवान की भक्ति से मुक्त होकर के उनके सेवक में उनके उनका उनकी सेवा प्राप्त करें, इसी यही जीव का स्वरूप है। भागवत में, गीता में, वेदों में ये कहीं नहीं कहा गया जीव ही पर ब्रह्म है, कहीं नहीं कहा गया। वेदों में तो ये कहा गया नित्यो नित्यम चेतनश्चेतनानाम एको बहुधा विदधाति सर्व काम। जीव नित्य है, सनातन है, और उनमें परम नित्य कौन है? स्वयं भगवान पर ब्रह्म। कृष्ण पर ब्रह्म है, ब्रह्म ही नहीं है, ब्रह्म तो उनके चरण नख की छाया है केवल एक। वो इसलिए छाया या प्रकाश निराकार होती है, ब्रह्म सांग कोई चीज नहीं है। भगवान कृष्ण के चरण नख की चंद्रिका का प्रकाश ही ब्रह्म है। तो नित्यो नित्यानाम, जीव नित्य है, नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, जितनी भी प्राणी जगत में है जो चेतन है उस सब में परम चेतन है, सबके नियामक है। और भगवान की भक्ति से ही उनको जाना जा सकता है। और भी वेदों में लिखा भक्ति रेवैनं नयति भक्ति वशो पुरुषः, भक्ति के वश में भगवान होते हैं, भक्त ही भगवान के निकट में ले जाती है। और भी कितने ऐसे सब भागवत में लिखा है, ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं। शंकराचार्य साक्षात शंकर हैं, महादेव परम वैष्णव और भक्तों के वैष्णव के गुरु हैं। भगवान से एक आत्मा हरिहर भी आत्मा है, इतने तत्व ज्ञान में भगवान के तत्व ज्ञान में अग्रसर है। उनको भगवान ने आदेश है जे कलयुग में असुर लोग हमारी आराधना करके और हमको तंग करेंगे, विविध प्रकार की कामनाएं मांगे, तुम ऐसा करो कि हमें छिपाओ, कुछ ऐसा सिद्धांत कुसिद्धांत बनाओ जो लोग उसमें भ्रमित हो जाएं और हमारी आराधना न करें। तब शंकर ने कहा जैसे प्रभु विष निकला तो हमको खिलाया और फिर अपनी सेवा के विरुद्ध में हमको ऐसा आदेश दे रहे हैं, कहिए तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कोई है ही नहीं जो ऐसा कर सके, विश्व को मोहन कर सके। तो उन्होंने जैसी इच्छा आपकी, तब उन्होंने कहा जगत में आए शंकराचार्य के रूप में और यहां पर कहा जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परम। वेदों का ये बात नहीं है, शंकराचार्य जी ने खुद लिखा। क्या लिखा? ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है। और जगत मिथ्या है, पहली बात यदि जगत मिथ्या है तो शंकराचार्य जी की वाणी भी मिथ्या है। क्या इस जगत में राम कृष्ण इत्यादि आए, वेद इत्यादि आए, ये सब मिथ्या है? भागवत की बातें क्या मिथ्या है? कृष्ण भी मिथ्या है? विचार कीजिए। इसलिए यह विचार नहीं है, केवल शंकराचार्य ने जीवों को मोहित करने के लिए, बौद्धों को देश से विताड़ित करने के लिए उन्होंने ऐसी कहा। दूसरी बात, शंकराचार्य ने वेदों के चार प्रादेशिक वाक्यों को, खंड वाक्यों को महावाक्य कहा, किंतु वास्तविक में महावाक्य केवल मात्र प्रणव ओंकार है, वही वेद का मूल है, वही उसी से वेद का विस्तार हुआ। उसमें खंडवाक्यों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ग्राम ज्ञानी स्वरूप, और सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सभी कुछ ब्रह्म है। अब इस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं, यहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग शंकराचार्य के भी आते हैं, आप लोग जरा सावधान रहेंगे इसलिए मैं कह रहा हूं। अभी आते समय में हमको कुछ ऐसे एक महाविद्वान से भेंट हो गई, थोड़ी सी बात हुई थी, इसलिए इस प्रसंग में मैं बतला रहा हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि, यदि कृष्ण कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये तो बात तो गलत नहीं, कृष्ण ब्रह्म है, ठीक है, और कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, मैं ही पर ब्रह्म हूं। अभी अभी ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, क्या कहा, अहो भाग्यम नंद गोप रिजौक्षाम जन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। जीव के लिए इसका प्रयोग कहीं है, वेदों में शास्त्रों में कहीं भी, यदि जगत मिथ्या है तो राम कृष्ण मिथ्या हुए और शंकराचार्य की सारी बातें भी झूठी है, इसलिए जगत सत्य है। दूसरी बात, यदि ब्रह्म ही केवल है, एकमात्र एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही मात्र है, तो फिर वो लोग कहते हैं कि माया ने ब्रह्म को आच्छादित कर दिया या पकड़ लिया तो ये जीव हुआ, जीव और कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है, किंतु अपने को जो मान रहा है ये माया के कारण मान रहा है। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, माया तो है ही नहीं, ये कहां से आई। सबसे बड़ी बात ये है, ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम, ज्ञान स्वरूप है, माया ने उनको पकड़ा न जीव को, किसको, यदि कहो जो ब्रह्म को, तो ब्रह्म तो सब समय पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, उनको तो माया व्याप नहीं सकती, यदि कहो जो जीव को, जीव को माया व्यापी, तो जीव आया कहां से, जीव तो था ही नहीं, वो तो माया के वजह से तुम कह रहा है, इसलिए मायावाद एक युक्ति पर ठहरता नहीं है अद्वैतवाद, इसलिए जीव ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का दास है, जीव में ब्रह्म के कुछ गुण है, इसलिए कहीं कहीं पर ब्रह्मैव ब्रह्म की भांति कहा गया है, इसलिए वो नहीं है। और भी बहुत से विचार हैं इसमें, हमारे शास्त्रकारों ने दिखाया है, इसलिए भागवत में कहीं भी ऐसा नहीं बतलाया गया कि जीव ब्रह्म ही हो गया। कोई कहते हैं कि घटाकाश पटाकाश, घड़ा नष्ट हो गया तो फिर वो आकाश में मिल गया, उसमें घट में जो आकाश था, घड़ के घटा के घड़ के टूटने पर वो मिल गया, तो ये घड़ा जो था वो कहां गया, जो फूट गया घड़ा वो कहां गया, किसने फोड़ा, किसने किसने फोड़ा, वो कहां है, तो गड़बड़ हो गया,
किसने?
नदियां कहते हैं, नदियां अपना नाम रूप सब छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, एक हो जाती है, कोई भी पानी पानी में मिलता नहीं है, एक ग्लास पानी रखो ऊपर से एक ग्लास और पानी उसमें भरो, पानी में पानी मिल गया, यदि मिल जाता तो गिरता क्यों, अणु में अणु मिलता नहीं है, वो तो पानी में पानी डाला और अधिक बढ़ गया, वो नीचे गिर गया, तो मिला कहां, एक कहां हुआ, संसार में एक नाम की कोई चीज नहीं है। कहो जे एक रेखा है, रेखा में बहुत से बिंदु मिलकर के एक रेखा होती है। भगवान एक नहीं है, उनके जैसे राजा कहने से प्रजाएं, मंत्री, सिपाहियां, सेना, ये सब होता है। ऐसे भगवान कहने से भी उनके 6 गुण ऐश्वर्य हैं और उनके भक्त भी हैं, उनकी भक्ति भी है। इसलिए ये कोई कल्पना है, इसलिए आप लोग भक्ति का महत्व देंगे। भक्ति कहने से ही शंकर की भक्ति नहीं होगी, भगवत तत्व होना चाहिए, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, नृसिंह हो, विष्णु हो, और किसी के भी प्रति यह भक्ति नहीं होगी, उनके लिए श्रद्धा इत्यादि का उपयोग। यह जयंती केवल कृष्ण के लिए है, गांधी जयंती कहते हैं, कृष्ण के राम के जन्म को भी जयंती नहीं कहते। जब कृष्ण जन्म लेते हैं, रोहिणी नक्षत्र होता है, बुधवार होता है, उसमें अष्टमी जो मिलता है, तब वो जा करके जयंती होती है। ऐसे तैसे नहीं, जहां जिसको तिसको, जवाहरलाल जयंती, गांधी जयंती, और अभी करुणानिधि जयंती, अभी दक्षिण भारत के, ये सब नहीं। मैं प्रसंग बस तक यह कहना चाहता हूं, अभी भारतीय संस्कृति पर आक्रमण हो रहे हैं, रामचंद्र जी का अस्तित्व नकार रहे हैं लोग, अस्वीकार कर रहे हैं, ये एक भारतीय संस्कृति के प्रति महा अपराध है, उनको दंड देना चाहिए और राम सेतु की रक्षा के लिए हम लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। संक्षेप में यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अभी हमारे तीर्थ महाराज जी कृष्ण की अद्भुत मधुर लीलाएं रह गई हैं। इंद्र का मोह हुआ, उन्होंने समझा मैं ही भगवान हूं, उनके मोह को चूर्ण दूर्ण कर दिया कृष्ण ने और अभिषेक किया, उनका नाम गोविंद रखा। इसके बाद में अब समय कम है, इसलिए तुम कुछ गोपियों की कृष्ण के प्रेम के बारे में, जो भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, उसके संबंध में कुछ बोलो।